फिर इसी तरह मुनाफिकीन, अब सवाल पैदा होता है, दिल तो कर रहा है सब कुछ करने को, तो फिर करता इंसान क्यों नहीं? उसकी बहुत बड़ी वजह निफाक। आप अपने नोट्स में लफ्ज़ लिखिए निफाक, नून फा अलिफ काफ, ऐसे लिखते हैं ना। अब इससे पहले एक अलिफ लगा दें, निफाक से निकालने वाली चीज़ इन्फाक है। और इन्फाक क्या है? युन्फिकूना, खर्च करना। यकीन करें, अगर आपको अपने दिल में कोई निफाक का ज़रा सा शाइबा भी दिखे ना, तो अल्लाह के रास्ते में खर्च करना शुरू कर दें। आप देखेंगे अल्लाह के हुक्म से मुनाफ़िकत ख़त्म होगी, और जहाँ इन्फाक नहीं है ना, तो वहाँ निफाक ज़रूर आएगा। अल्लाह ताला हमें बचा के रखे। क्या है मुनाफिकीन की मजम्मत में आयत? सूरत निसा 142, और ये बिल्कुल पारे कैंड भी है। वईज़ा क़ामू इलस्सलाति क़ामू कुसाला, जब ये नमाज के लिए उठते हैं तो सुस्त होकर खड़े होते हैं। यानी पढ़ते तो हैं मुनाफिक भी नमाज, लेकिन सुस्तियों के मारे हुए। एक दूसरी जगह सूरत तौबा आयत 54, वला यातून सलात इल्ला वहुम कुसाला वला युन्फिकून इल्ला वहुम कारिहून, ये नमाज के लिए आते हैं तो सुस्ती के मारे हुए, और अल्लाह की राह में खर्च करते हैं तो नाखुश होते हैं। आप ज़रा से इस एक आयत को आईना बनाइए, अपना जायज़ा ले, किसी का लेने की क्या ज़रूरत है, फ़ायदा क्या होगा? आईने के सामने खड़े होंगे तो वो हमेशा आपको आपकी शक्ल दिखाएगा। अपने आप को पूछे, क्या मैं नमाज के लिए जाती तो हूँ मगर सुस्ती के मारे हुए? दुनिया के काम, बाजारों के चक्कर, खाना पीना घूमना, भाग भाग के फुर्ती से, और नमाज सुस्ती से, बैठ के ही पढ़ूंगी, मेरे से खड़ा नहीं हुआ जाता, मेरे से झुका नहीं जाता, सजदा तो अब होता ही बहुत थोड़े लोगों से है। मैं सोचूं ज़िंदगी में सजदे छुट गए, आगे जाके क्या होगा? तो नमाज के लिए अपनी कैफियत को नोट करें, खुशी से आती हूँ। आप देखिए, सेल का साइन हो ना, तो लोग वक्त से पहले वहाँ पहुँचे होते हैं कि आज पहला दिन है, हम ही ले लें सब कुछ। और वो जो 25 नवंबर के करीब एक दिन होता है, 6 बजे से पहले अमेरिका में लोग दुकानों के बाहर खड़े होते हैं, और जब शटर खुलते हैं तो कई लोग एक दूसरे के पाँव के नीचे आके दब जाते हैं, क्योंकि वो भाग रहे थे कि आज हम ले लें सबसे पहले, क्योंकि उन्होंने भी तो झांसे दिए हुए ना, 6 टीवी हैं सिर्फ, और 4 कंप्यूटर हैं, और फलां हैं, तो जिसने ले लिया वो ले लिया, तो वो ये था कि वो मैं ही ले लूँ। और ये जो iPhone 7 का इफ्तिताह हुआ था, मैं लंदन में थी उस दिन, शायद पिछले 1.5-2 साल पहले की बात है, 7 ही होगा आई थिंक सो। तो मेरे हस्बैंड ने बताया कि आधी रात 2-3 बजे से लोग एप्पल स्टोर के बाहर जमा होना शुरू हो गए, दावा के लिए चलते हैं वहाँ, ये है वो है। क्यों भाई? क्या कि आज नए फ़ोन का ब्रांड खुलना है? तो मैंने कहा कि वो आगे फौत हो जाना है, सारे ख़त्म हो जाने हैं? नहीं, लोगों को ये डर है कि कहीं शॉर्ट ना हो जाए, हम पहले ले लें, इसको शौक कहते हैं। दीन के लिए क्या शौक है? वक्त पे पहुंचते हैं, टाइम पे पहुंचते हैं, या टाइम से बाद पहुंचते हैं? आप और मैं अपने लिए भी सोचें। आप देखिए कि शौक होगा ना तो किसी को याद नहीं करवाना पड़ेगा, और शौक नहीं होगा तो मजबूरी में तो करेंगे काम, लेकिन कमी बेशी ज़रूर हो जाएगी। आज आप और मैं देखें अपने आप को, यकीन कीजिए कि मांगने वाली चीज़ है कि अल्लाह शौक दे दे। ना बंदा किसी के डर से ये काम कर सकता है, ना किसी की लालच से कर सकता है, ये अपने अंदर की बात है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो आपके मेरे लिए नमाज़ों को आसान कर दे। और दूसरी अलामत देखिए मुनाफिकों की, खर्च तो करते हैं, ये नहीं कि मुनाफिक खर्च नहीं करता, मगर ना खुशी से, मारे बंद ऐसे नोट फेंकता है जैसे भीख दी है, पुराना नोट निकाल के देगा, पकड़ो फिर, जान नहीं छोड़नी तुम लोगों ने, ले लो फिर। चलिए अपने से चंद सवाल करते हैं। मैं अल्लाह के रास्ते में खुशी से खर्च करती हूँ? अल्लाह का रास्ता क्या होता है? क्या मस्जिद के डोनेशन बॉक्स में? नहीं, वो तुम खुशी से दे देते हैं, क्योंकि ख्वाब भी देखा ना कोई बुरा, तो सदके में देना है तो दे दो। असल अल्लाह का रास्ता वो है जो हम अपनी ज़ात पे लगाते हैं अल्लाह के दीन के लिए। घर से निकले, ज़ाहरा टिकट ली तो यहाँ पहुँचे, खुशी से ली। गाड़ी में गैस डलवाई, खुशी से डलवाई। किताब खरीदी, खुशी से खरीदी। फीस दी, खुशी से दी। बच्चे के लिए दी, खुशी से दी। आप देखिए कि मैं इतनी हैरान होती हूँ इस चीज़ पे कि बच्चों के ऊपर भी बाज़ दफ़ा इंसान हज़ारों खर्च कर देता है। शौक है, आदत है, हमारा कल्चर है, बल्कि एक मर्द बेचारा तो ज़्यादा अपने बीवी बच्चों पे खर्च करता है, लेकिन उन्हीं बच्चों को आइसक्रीम खिलाते हुए 20-25 खर्च हो जाएंगे, लेकिन उन्हीं बच्चों को इंसान का बच्चा बनाने के लिए 20 25 30 40, क्या 5 भी बहुत ज़्यादा लगते हैं? और उम्मीद क्या की जाती है कि कुछ साथ भी गिफ्ट दे दिया जाए तो बेहतर है। आप देखिए कि इससे सच्चाई का पता चलता है, और बच्चों को तो नहीं पता होता लेकिन अल्लाह को पता होता है। मेरे आपके दिल में अपने बच्चों को क्या बनाने का ख्वाब है, ये कब पता चलता है? जब हम उनकी तरबियत पे खर्च करते हैं। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज हम बच्चों की तरबियत पे खर्च करने को वक्त और पैसे का जिया समझते हैं। माले मुफ्त दिले बेरहम को जाते आते राह जाते को अच्छी बात कानों में, बड़े शौक तो बहुत है लेकिन संजीदगी के साथ हम अपने बच्चों को नहीं ले सकते। मुझे आपके शहर का नहीं पता कि यहाँ को फुल टाइम बच्चों का स्कूल है, इस्लामिक स्कूल, लेकिन अमेरिका में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे अब खुल गए। अमेरिकन स्कूल फ्री, क्योंकि वो सारा हमारे टैक्सों से चलता है। हम सब भी देते हैं, जिनके बच्चे भी नहीं होंगे वो भी देते हैं। आप कहते हैं बच्चों की तालीम फलां मुल्क में फ्री है, फ्री नहीं होती, वो भी देते हैं जिनके बच्चे नहीं हैं, तभी तो वो चलता है। लेकिन जो आम तौर पे इस्लामिक स्कूल खुलते हैं उनको फंडिंग तो नहीं मिलती ना गवर्नमेंट से। बिलीव मी, जब मैं थी तब, अब तो 10 साल हो गए, इससे भी ऊपर हो गया होगा, 300 400 डॉलर्स पर मंथ बच्चों का खर्च आता था एक बच्चे का। और माशाल्लाह जिनके दो तीन बच्चे हैं, हज़ार हज़ार डॉलर, और इकट्ठे वो साल के चेक लेते हैं, 6 माह के कोई लेता है, हर स्कूल का फ़र्क था। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखा है कि वो देते हैं जिनको पता है कि हमारे बच्चे यहाँ से क्या बनेंगे। और कुछ लोग सिर्फ इन पैसों को बचाने के लिए अपने बच्चों को पब्लिक स्कूलों में भेजते हैं, और जब बच्चे उनके क्रिमिनल बन जाते हैं और माँ बाप को गालियाँ देते हैं तो फिर रोते हैं। और अब मैंने यूरोप में भी देखा है, बिल्कुल मुतवसत उनकी पे है। उन्होंने खुद हमें बरमला बताया कि मेरे हस्बैंड की 1400 तनख्वाह है एक मर्द की, जिसमें घर का किराया, बिजली बिल, खाने पीने, इसके बावजूद वो अपने शायद दो तीन बच्चों को इस्लामिक स्कूल भेज रहे हैं, और शायद 600 700 यूरो बच्चों को जाता है, लेकिन वो दे रहे हैं क्योंकि उनको पता है वो दीन से जुड़े हुए हैं, उनको इल्म की कदर है। और बच्चों को एक सेकंड में देखें तो एहसास होता है, इतने प्यारे बच्चे, इतनी प्यारी किरत, इतने डिसेंट बच्चे, मुहज्जब बच्चे, तो क्या वो 600 लग रहे? नहीं, वो पलट रहे। आपने वो वाक्य भी सुना होगा इमाम रबी का, कि एक शख्स अपनी बीवी को कुछ पैसा दे के गए और चले गए कहीं बाहर, बहुत पुरानी कहानी, कई साल ना आए। जब कई सालों के बाद आए तो कहा नमाज़ पढ़ लूँ, मस्जिद में गए तो वहाँ देखा एक छोटी सी उम्र का लड़का बड़ी प्यारी नमाज़ पढ़ा रहा है, उसने बाद में दर्स दिया। कहने लगा कितना खुशकिस्मत होगा, इसका बाप है कौन? वहाँ से निकले, घर का दरवाज़ा खटखटाया, बीवी ने खोला, वो बीवियाँ भी सब्र आ ली थी, हम होती तो पुलिस को बुला लेते कि देखो ज़रा ये इतने साल बाद आ गया। लेकिन वो बीवी भी अच्छी थी, आई बैठी, कहाँ थे, क्या थे, ये थे वो, और अल्लाह का बंदा था भी कैसा। कहने लगा जो पैसे दे के गया था हिसाब दो, कह भी देती हूँ ज़रा ठहर तो जाए। थोड़ी देर गुजरी तो घर का दरवाज़ा नॉक हुआ, वही जवान जिसके पीछे अभी नमाज़ पढ़ के मस्जिद में आए वो घर में आ गया। माँ ने कहा जो पैसा दे गए थे वो इस बच्चे पे लगाया, ये तेरा बच्चा, जो पैसे तूने दिए थे वो मैंने इस बच्चे की तालीम और तरबियत पे लगाए हैं। फिर उसने कहा कि तूने मेरे पैसे की सही कदर की है। तो याद रखिए कि ये एक इंसान की सच्चाई है कि वला युनफिकून इल्ला वहुम कारिहून। ऐसे नोट निकलते हैं हमारे हाथों से, मैकडोनल्ड पे खड़े हो जाए, चिक्की चीज़ पे खड़े हो जाए, KFC बर्गर पे खड़े हो जाए, बच्चों को ईदी बांटने पे, यूँ नोट निकलते हैं और दिल भी खुश होता है कि शुक्र अल्लाह ने दिया तो दे रहे हैं। मैं कहती नहीं, बच्चों के सर का सदका समझ के अगर दीन पे खर्च कर देना तो अल्लाह इनको कई बलाओं और आफतों से टाल दे। बस मैं सिर्फ इसलिए अपने बच्चों को तालीम के लिए नहीं डालती कि नहीं फिर इनके ऊपर खर्च होगा, तो मैं कहती हूँ वो बचता तो फिर भी नहीं है, वो जो अचानक खर्चा बड़ा था ना वो असल में वो था जो आपने वो बचा लिया। मैं आप किसी को कुछ नहीं कह सकते लेकिन अपना जायज़ा ज़रूर लें कि मैं दीन पे खुशी से खर्च करती हूँ कि बेखुशी से। ना दे बंदा किसी को, देखिए हर एक ने सदका तो देना ही होता है कुछ, आप वो सदका अपने ऊपर दे लें। इल्म का सदका, बड़ा प्यारा सदका। हमारे यहाँ असल में रस्मी नेकियाँ करना अच्छा लगता है, दूसरी मुश्किल है। फिर नबी सल्लम भी अमाले सालिया में जल्दी करने का हुक्म फरमाया करते थे। एक बार आपने नेक अमाल में ताखीर ना करने और इन्हें जल्द इंजाम देने की रग़बत दिलाते हुए फरमाया, लगता है तुम तो बस सरकश बना देने वाली मालदारी के मुंतज़िर हो, यानी इतना माल तुम्हें मिल जाए कि तुम सरकश ही हो जाओ, या सब कुछ भुला देने वाली मुख्ताजी के, या बर्बाद कर देने वाली बीमारी के, या सठिया देने वाली उम्र रसीदगी के, या काम तमाम कर देने वाली मौत के, या दज्जाल के जो आँखों से ओझल एक ऐसी बुरी चीज़ है जिसका इंतज़ार किया जा रहा है, या फिर क़यामत के जो सबसे बड़ी आफत और सबसे तल्ख घड़ी है, ये तिर्मिज़ी की रिवायत है 2306 नंबर की। ज़रा एक एक लफ्ज़ पे गौर तो करके देखें, क्या अल्लाह के नबी ने खूबसूरत मंजरकशी की है। यानी क्या अब तुम सिर्फ मौत का इंतज़ार कर रहे हो, या क़यामत का इंतज़ार कर रहे हो, या बीमारी का इंतज़ार कर रहे हो, या मुख्ताजी का कर रहे हो, या सरकशी का कर रहे हो। मुराद ये है कि तुम खर्च नहीं करते अल्लाह के रास्ते में, या नेकी नहीं करते। एक और हदीस में आपने फरमाया, ये बड़ी प्यारी हदीस है, आप मेरे साथ दोहरा लीजिए, मन खाफा अदलज
वमन
अदलज बलगल मंजिला अला इन्ना सिलअतल्लाही गालिया अला इन्ना सिलअतल्लाहिल जन्ना। जो शख्स आखिर शब में दुश्मन की गारत करी का खौफ रखता है, वो अव्वल शब में चल पड़ता है, और जो अव्वल शब में चल देता है वो मंजिल पर पहुंच जाता है। ख़बरदार, अल्लाह का सामान या मता बहुत कीमती है, आगाह हो जाओ कि अल्लाह की मता जन्नत है। आप देखिए, ये रिवायत तिर्मिज़ी में मौजूद है 2650 नंबर की। आप इस हदीस पे गौर करें, जल्दी चलना क्या है, यानी सुबह होने का इंतज़ार करने से पहले निकल पड़ना। मतलब यह है कि नेकी का जब मौका आ जाए तो ये ना कहो कि अच्छा कल, अच्छा परसों, बल्कि जितना ज़्यादा आप और मैं एक काम को करने के लिए जल्दी से कोशिश शुरू कर देंगे, उतना अल्लाह ताला हमारे लिए आसानी करेगा। तो अब आप देखिए कि इस सारे टॉपिक से क्या समझ आया। फ़स्तबिकुल खैरात सारिविलल मग़फ़िरा और युसारिऊना फ़िल खैरात। तो ऐसे नहीं लगता कि ये वक्त, ये ज़िंदगी जो आपको मुझे मिली है, ये जितना जल्दी इस्तेमाल करेंगे उतनी ज़्यादा अच्छी इस्तेमाल होगी। आप देखिए ना कि किसी को आपने काम करते देखा हो, बस लोग कहते हैं कि बाहर के मुल्कों में घंटों के एतबार से पे करते हैं ना, ये तो हम सबको भी पता है। वजह, अगर वो एक घंटे के एतबार से पे कर रहे हैं ना, तो उस एक घंटे में काम भी लेते हैं। उन्होंने आपको बताया होता कि ये 20 बनने हैं। एक सिस्टर अपना तजुर्बा बता रही थी कि वो किसी भी डिस्पोजेबल बर्तनों की फैक्ट्री में काम करती थी, तो वो कहती हैं कि काम करने के दौरान इतनी होश नहीं होती थी कि अपनी साथ वाली से कोई बात करें। क्यों? कि अगर 1 मिनट बात कर दी तो 2 गिलास कम हो जाएंगे और एंड पे हिसाब होगा कि तुमने 2 गिलास कम क्यों बनाए। जब क्वालिटी टाइम होता है तो क्वालिटी की पे भी मिल जाती है। अगर यही क्वालिटी हम अपने मुल्कों में दें तो हमारा मुल्क भी दुनिया का बेहतरीन मुल्क बन जाए। तो अल्लाह से ये दुआ करते हैं कि ये ज़िंदगी जो मेरी आपकी गुजर रही है ना, इसको अल्लाह ताला बेहतरीन दूसरों के लिए रोल मॉडल बनाए, और फिर अपने लिए सोचें। आपको हमेशा ये एक अपलिफ्टिंग दे के जाती हूँ कि आप अपने आप को इस पूरे शहर में से मुमताज़ बनाएं, सबसे आला, क्योंकि आप हामिले कुरान हो रही हैं, आपने 21 पारे पढ़ ली हैं, आप दूसरों के लिए रोल मॉडल हैं। आप देखिए कि अगर मैं और आप वही करें जो सब करते हैं तो फिर फ़ायदा। डॉक्टर हमसे आला होता है ना, उसको बीमारियों का, दवाइयों का हमसे ज़्यादा पता होता है ना। तो कुरान पढ़ने वाले को तो अल्लाह की पसंद और नापसंद का दूसरों से ज़्यादा ही पता होना चाहिए ना। अब इसका ये नहीं मतलब कि हम कुरान ही ना पढ़ें, फिर भी नहीं बचेंगे। असल बात यह कि अब मेरा आपका काम यह है कि हमें देख कर लोग कहें कि ये क्या पढ़ने जाते हैं, हम भी चलें, क्योंकि इनका कॉल एक, इनका फेल एक, ये गीबत नहीं करते, ये बुराई नहीं करते, ये इनके बस वक्त बड़ा अच्छा है, ये हमेशा स्माइली होते हैं, इनके दिल खुले हुए हैं, इनकी ज़ुबानें छोटी हैं, इनके दिल बड़े हैं। आप ज़रा सोचें तो सही अपने आप को, आप सब जो भी लोग हैं अगर सारे इस किरदार के हामिल हो जाएं तो आपको लोगों को एडवर्टाइज़ नहीं देनी पड़ेगी, लोग खुद पूछ पूछ के आएंगे कि आप हैं कौन, आप कहाँ से आई हैं। और जितना ज़्यादा हम अपना किरदार पुख्ता करते जाएंगे उतना दावा होगी। लोगों ने हमारे कुरान थोड़ी पढ़ना है, किसी ने आज तक मेरा लफ्ज़ी तर्जमा सुना, या किसी ने आके मेरी ग्रामर चेक की, या किसी ने आके मेरे से कोई ऐसे फिकी सवाल किए? वो तो मेरे लिए। लोग मुझे कब अच्छा दीनदार समझेंगे? जब मेरा उनसे वास्ता पड़े तो मैं उनसे अच्छे अखलाक से काम करूं। तो अपने आप को हमेशा एक नज़र से देखें कि मैं हामिले कुरान हूँ, मैंने इस कुरान को थामा, ये कोई छोटी चीज़ थोड़ी है। बाज़ारों में है, रस्तों में है, चौकों पे है, ट्रेन्स में है, बसों में है, कहीं कोई रूल तोड़ना, कहीं कोई खिलाफे कानून बात करना, अपने लिए इतना बोझल कर लीजिए, क्यों कि लोग आपको बुरा नहीं कहेंगे, आपके इस्लाम को और आपके कुरान को कहेंगे। और मैं समझती हूँ कि जितना ज़्यादा आपका दिल साफ होता जाएगा ना, दिल खुलता जाएगा, उतना चेहरा भी साफ होगा। पहले दौर में मुझे याद है कि हम जब छोटे ही थे तो हमें साफ़ी नाम का एक कड़वा सिरप पिलाते थे हमारे अबू, रोते धोते नाक यूं बंद करके, वो गट्टा सा होता था काले रंग का, गाढ़ा थिक, और वो मुंह में ऊपर से पानी पीना, रोना, कहते नहीं इससे खून साफ होगा। खून साफ होगा क्या? चेहरा साफ होगा, दाने नहीं निकलेंगे। भाई ये क्या बात है, हम तो मुंह पे कुछ क्रीम लगाएंगे तो ये होगा होगा, नहीं, ऊपर की चमक नहीं होती, अंदर की होती है। तो दुआ कीजिए कि अल्लाह हमारा अंदर चमका दे। कैसे जल्दी करें हम सब? आपके पास कोई प्लान, कोई मौका? जी आप।
सादा, मैं यही पूछ रही थी कि अभी जो हम माशाल्लाह से 2-3 दिन से जो वक्त के इस्तेमाल और उनकी अहमियत पे जो बात कर रहे हैं, तो मुझे ये पूछना था कि एक घर में रहने वाली औरत नेकियों में सबकत कैसे लेके जा सकती है, जबकि वो अपने अल्हम्दुलिल्लाह कुरान से भी जुड़ी हुई है, अपनी क्लासेस भी ले रही है, क्लास में अच्छा मामले भी चल रहे हैं, उसके बावजूद अगर उसके पास गनीमत टाइम है।
देखिए कि हम में से हर एक उसी चीज़ का मुकल्लफ है जिस पे अल्लाह ने रखा है। घर में रहकर तो औरत बहुत आराम से अपनी नेकियों को बढ़ा सकती है। अल्लाह ने हर बच्चे की सूरत में हमारे लिए एक अकाउंट खोला है, शौहर के साथ, घर वालों के साथ मामले में। और मैं सोचती हूँ कि औरत घर में रहती है ना, कितनी सिक्योर्ड है, जहन सोच भटकती नहीं। आप थोड़े से घर से बाहर निकलें, कुछ भी ना करें, आपकी सोच भटक जाती है। तो इसके लिए ये है कि हमेशा अपनी जिम्मेदारियों को पहचानें। अपनी जिम्मेदारियों को अगर इखलास के साथ अल्लाह के दिए हुए तोहफे समझकर पूरी करेंगे ना, आपके लिए वो भी अजर है। और नियत करें कि मैंने अपनी नस्ल ऐसी तैयार करनी है कि जो मेरा नाम लें, कौन नानी थी ऐसी जो ये कर गई, कौन दादी थी इन बच्चों की, किसने इनको ये बात कही। तो इंशाल्लाह ताला जब अल्लाह ताला से मदद मांगते हैं तो अल्लाह ताला ज़रूर मदद करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? मरूरे अय्याम से इबरत पजीरी। मरूरे अय्याम से इबरत पजीरी। मरूर क्या भाई? मर्रा या मुर्रू, मरूर, मर्रा क्या? गुजरना। कुरान पाक में तीसरे पारे में आता है, औकल्लज़ी मर्रा अला क़रयतिन, हज़रत उज़ैर का तذکرہ है, तो मर्रा गुजरने को कहते हैं। तो मरूरे अय्याम क्या है? दिनों का आना जाना। तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन्नास, सूरह निसा में ये भी आता है। मोमिन को चाहिए कि शब रोज़ की आमदोशुद से अपने लिए सामान्य इबरत हासिल करे। इसके लिए शब रोज़ हर नई चीज़ को पुरानी बना देते हैं, हर बईद को करीब कर देते हैं, उम्रों को समेट देते हैं, छोटों को बूढ़ा बना देते हैं और बूढ़ों को फनाह के घाट उतार देते हैं। इज़ इट ट्रू? छोटे छोटे बच्चे हमारे हाथों में बड़े नहीं हो जाते? और हमारे जवान माँ बाप अब बूढ़े नहीं हो गए? तो क्या हम हर दिन आगे से आगे नहीं जा रहे? ये है मरूर अय्याम। यानी वक्त का पहिया चलता है तो इंसान को कहाँ से कहाँ ले जाता है। किसी ने ऐसी फैमिली ग्रुप में कुछ पिक्चर्स शेयर की जो किसी का बचपन था तो किसी की जवानी थी, जिनका बचपन था वो अब जवान है, तो जिनकी जवानी थे वो अब बूढ़े हैं। तो मैं उन पिक्चर्स को देख के सोच रही थी, खुद को तो नहीं लगता लेकिन कैमरे की आंख झूठ नहीं बोलती। उसको पता चल जाता है कि ये बंदा अब 10 साल पीछे गया है या 10 साल आगे गया। तो मैं और आप कुछ भी नहीं करेंगे ना, बूढ़े तो हम हो रहे हैं, बीमार तो हम दिन ब दिन हो रहे हैं, कमज़ोरियाँ तो आ रही हैं, तो बेहतर है कि इसको कैश करवा लें। बिलाशुबा गर्दिश लैलो नहार में बड़ा सामान्य इबरत है, इसलिए मोमिन के लिए ज़रूरी है कि वो इन चीज़ों से इबरत हासिल करे और गौर व फिक्र से काम ले। हर दिन जो गुजरता है, बल्कि हर गुजरने वाले लम्हे में इस कायनात और इंसानी ज़िंदगी के अंदर कोई ना कोई हादसा ज़रूर रूनुमा होता है। इनमें से कुछ नज़र आते हैं और कुछ नहीं, कुछ का इल्म होता है और कुछ का नहीं। कितनी ज़मीनें जिंदा होती हैं, कितने दाने उगते हैं, कितने पौधे लहलहाते हैं, कितने फूल बराबर होते हैं, कितने फल तोड़ लिए जाते हैं और फसलें सूख कर भुस बन जाती हैं, और हवा इन्हें लिए उड़ती फिरती है, या रहमे मादर में कितने जनीन बनते हैं, कितने बच्चे पैदा होते हैं, बच्चे जवान होते हैं और जवान उधेड़ होते हैं और उधेड़ बूढ़ा हो जाता है और बूढ़ा मर जाता है। इसी तरह गर्दिश अर्ज़ो समा के साथ साथ लोगों के अहवाल में तब्दीली रूनुमा होती रहती है। मसलन आसानी और दुश्वारी, यानी किसी की ज़िंदगी में आसानियाँ आ रही हैं तो कहीं दुश्वारियाँ आ रही हैं, मालदारी और मुख्ताजी, सेहत और बीमारी, खुशी गम, तंगी फराकी, खुशहाली बदहाली, غرض کہ ان سب چیزوں میں عقل مندوں کے لیے نشانی، اہل دل کے لیے یاد دہانی اور اہل بصیرت کے لیے سامان عبرت ہے۔ ہاں جو شخص عقل مندوں کی فکر سے، اہل دل کے احساس اور اہل نظر کی نظر سے محروم ہو گیا، اس کے لیے سارا کارخانہ ہست و بود بے سود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ آل عمران 190، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، زمین و آسمان کی پیدائش میں اور رات اور دن کے باری باری سے آنے میں خوش مندوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ سورۃ نور 44 ایک اور آیت ہے، یکلب اللہ اللیل والنہار ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، رات اور دن کا الٹ پھیر اللہ ہی کر رہا ہے، اس میں ایک سبق ہے آنکھوں والوں کے لیے۔ تو کیا پتہ چلا اس پوائنٹ سے مجھے آپ کو، کہ دوسروں کے حالات سے عبرت لیں۔ جب میری ماں جوان نہیں رہی تو میں نے بھی نہیں رہنا، جب میری نانی دنیا میں نہیں رہی تو میں نے بھی نہیں رہنا، جب ہمارے خاندان کے سب سے امیر شخص آج سفید پوشی پہ آ گئے تو میری دولت بھی ہمیشہ نہیں رہنی۔ اور اگر آپ دیکھیں تو دن رات ہمارے ارد گرد جو کچھ ہو رہا ہے، ہم اس سے کتنا کچھ سیکھ سکتے ہیں، لیکن عموماً لوگ ان چیزوں کو دیکھ کر کیا کہتے ہیں، یہ تو پھر ایک وقت کا پہیہ گھوم رہا ہے، یہ چل رہا ہے، یہ تو چلنا ہی ہے، یہ تو جائے گا ہی، یہ تو ویسا ہی ہوگا۔ تو جتنا زیادہ آپ اور میں اس کے اوپر غور و فکر کریں گے، آپ سیکھیں گے۔ اب کتاب تو ہمیں کبھی کبھی پڑھنے کا موقع ملتا ہے نا، لیکن لوگوں کی صورت میں جو چلتی پھرتی کتابیں، اس کو دیکھیں۔ آپ کو یاد ہوگا ایک وقت تھا، لوگ کہتے تھے بڑے نصیحت آموز ڈرامے ہم دیکھتے ہیں، یہ بڑی گھریلو کہانی ہے، یہ فلم بڑی سبق آموز ہے۔ اب لوگوں نے فلموں اور ڈراموں اور ان کی چیزوں سے اگر کچھ سیکھا ہوتا تو پھر آج تو سب سے زیادہ اچھے کردار کے وہ لوگ ہوتے نا، کہ جن کو فلمیں دیکھنے کا شوق ہے۔ لیکن میں نے دیکھا ہے کچھ لوگوں کو سوچنے کی بڑی عادت ہوتی ہے، ہر چیز پہ غور کرتے ہیں، اب کیوں ہوا، ایسا کیوں ہوا، آج میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا۔ اور آپ کو اگر اپنے بارے میں یہ عادت پڑ گئی نا، یہ میرے پاؤں کیوں ٹکرایا پتھر سے، میں نے کوئی غلطی کی ہے، کوئی کمی ہے، کہیں کوئی خوبی ہے، آج ایسا کیوں ہوا، آپ دیکھیں سوچنا شروع کر دیں۔ اور سوچنے کے لیے کیا ضروری ہے، آپ کا ذہن خالی ہو۔ مسئلہ پتہ کیا ہو گیا، آج ہمارا ذہن خالی نہیں رہا، اتنی انفارمیشن کی بھرمار ہے ہمارے دل و دماغ پر، اور جب سے ہمارے فونز میں نیٹ آ گئے، ہم تو کیا، ہمارے بچے بھی بزی ہو گئے، سوچنا ہی چھوڑ دیا۔ تو عبرت لیجئے، اللہ کے نبی کی ایک روایت کا خلاصہ ہے، السعید من وعید بغیر ہی، عقل مند ہے وہ جو دوسرے کے حالت سے ہی نصیحت پکڑ لے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں نصیحت والا بنا دے۔